कृष्णा, स्वागत है आप सबका इस साप्ताहिक श्री कृष्णा भावनामृत कार्यक्रम में और आशा करते हैं कि आप सभी लोग सुखी और स्वस्थ होंगे। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आज का दिन आप सबों के लिए मंगलदायिनी और शांतिमय हो। आज आपके सेवा में प्रस्तुत है परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी, जो आपको राम कथा सुनाएंगे।
वंद्य अवतार में यह एक अपनी ही विशेषता है कि वे देवताओं की याचना करने पर तब यहाँ आते हैं। आज कोई अपने को भगवान कहता है तो उससे पूछिए कि उसको कौन ने कुत्ता भी कहा था आने के लिए यहाँ संसार में? कोई जानता था कि कौन दुष्ट आएगा जन्म लेगा? किसी को पता था? भगवान के किसी किसी अवतार का पता करोड़ों वर्ष पहले हो जाता है और देव का पता होता है, व्यक्ति का पता होता है कि इसको भगवान पिता बना रहे हैं, इसको माँ बना रहे हैं, इस स्थान पर इस वर्ष से इस दिन भगवान का अवतार होगा, पहले से सब निश्चित हो जाते हैं। कुछ अवतार एक्सीडेंटल होते हैं, जैसे नृसिंह अवतार या बारह अवतार। भगवान नृसिंह देव के अवतार की कोई पूर्व सूचना नहीं है, अकस्मात प्रकट हो गए, परंतु फिर भी भगवान ने कहा था कि मैं हिरण्यकश्यपु का वध करूंगा, परंतु कब करेंगे, कब कहां प्रकट होंगे, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। और नृसिंह अवतार में भगवान ने कोई माता पिता स्वीकार नहीं किया, खंभे को ही अपने पिता के रूप में स्वीकार करके प्रकट हो, वही मां नहीं हुई नृसिंह भगवान के, पिता भी नहीं। लेकिन भगवान श्रीराम पिता स्वीकार किए, माँ स्वीकार किए। बहुत से ऐसे भक्त हैं जो भगवान को अपने पुत्र रूप में पाने के लिए व्याकुल रहते हैं, चाहते हैं कि भगवान को हम गोद में खिलावे, दूध पिलावे और नाना प्रकार से जैसे अन्य बच्चे की सेवा करते हैं वैसे भगवान हमारे पुत्र हो जाते और हम सेवा करते। यह बहुत ही ऊंचा भाव है। इस संसार में प्रायः इच्छा होती है गृहस्थी स्वीकार करने पर कि हमको कोई पुत्र हो, पुत्री हो। माँ की गोद सुनी रहती है पुत्र के बिना, वे गृहस्थी की बहुत ही सौभाग्य है वास्तव में। तो जब सामान्य जीव को भी हम पुत्र मानकर और उसके लालन पालन में इतना आनंद का अनुभव करते हैं तो जिनके पुत्र स्वयं भगवान होंगे उनको कितना सुख मिलता होगा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव दशरथ अजीर बिहारी, दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले जो मंगल के भवन हैं और अमंगल का हरण करने वाले हैं वे श्री राम हम पर द्रवित। वास्तव में भगवान के वैसे बहुत से अवतार हैं, लेकिन जो ये दो अवतार हुए ये तो स्वयं वे आए और फिर भगवान श्री राम के रूप में, यही दोनों बहुत ही लोक प्रसिद्ध है और बहुत प्रिय, प्राय सभी लोग जानते हैं। कई कई टीका में श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी जब अवतार की बात करते हैं तो कहते हैं जैसे राम कृष्णा देवतारी, ऐसे बोलते हैं। जैसे राम कृष्ण अवतार बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत प्रिय अवतार है भगवान का। ऐसे दोनों की लीलाओं में पार्थक्य है, लीला भेद है, दोनों दो नहीं है, व्यक्ति एक ही है, दो रूप में अपने को मैनिफेस्ट करके और भगवान लीला करते। एक में उन्होंने भगवान की लीलाएं की है और दूसरे में एक परफेक्ट मनुष्य की का आसन प्रस्तुत किया मर्यादा में रखकर। इस दृष्टि से देखा जाए तो भगवान श्री राम की लीलाएं अत्यधिक लोकप्रिय है, क्योंकि भगवान मर्यादा में रहे। देवताओं ने प्रार्थना किया भगवान से अवतार लेने के लिए और महाराज दशरथ भी तरसते थे पुत्र के लिए, भगवान को पुत्र रूप में पाने के लिए। तो भगवान ने अपने को चार रूप में व्यक्त किए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। बहुत प्रसिद्ध बात, बहुत काल तक महाराज दशरथ को कोई पुत्र नहीं हुआ तो उन्होंने ऋषि श्रृंग, श्रृंगी ऋषि जिनको कहते हैं, उनको बुलाए और श्रृंगी ऋषि ने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में चरु पकाया गया वेद मंत्रों से, वैदिक मंत्र से चरु पकाया गया तो उसमें बहुत शक्ति आ गई और उससे चरु को बांटा गया रानियों को खाने के लिए। तीन रानियां थी महाराज दशरथ की, तो चरु का आधा भाग कौशल्या को दे दिया गया और आधा में फिर आधा किया गया वो कैकेयी को दिया गया और जो बचा था उसके दो टुकड़े किए गए दो भाग में। लेकिन कौशल्या जी ने कहा कि ये दोनों सुमित्रा को दे दो। इस प्रकार उसे पायस के खाने से माताएं गर्भवती हुई। पर ध्यान रखना चाहिए कि भगवान का शरीर है माता पिता के रज वीर्य का परिणाम नहीं होता, भगवान का नक्श सिख तक शरीर दिव्य है, चिन्मय, परंतु फिर भी बाहर से भगवान बहाना बनाकर गर्भ में प्रवेश करते हैं। हम यहां से प्रारंभ करेंगे भगवान के जन्म की लीला को। जादिन ते हरि गर्भ आए सकल लोक सुख संपत्ति शायद। भगवान जब भी इस संसार में आते हैं तो उनके आगमन मात्र से सर्वत्र सुख छा जाता है, केवल असुरों को छोड़ करके बाकी सब लोग शांत हो जाते हैं। उन भगवान के आने पर राक्षस, असुर, दुष्ट जीव घबराने लगते हैं, अपने आप उनको घबराहट होने लगते हैं, पता नहीं कौन विपत्ति आने वाली है, ऐसा लिखा गया है भागवत में। जब भगवान बारह देव का अवतार हुआ तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दीति के स्तनों से खून चूने लगा, जबकि सर्वत्र मंगल हो रहा था संसार में। भगवान हिरण्याक्ष का वध करेंगे इस कारण से उसकी मां के स्तनों से रक्त बहने लगा। तो जो दुष्ट होते हैं, भगवान के विरोधी होते हैं, वेद शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, भगवान के आने पर उनको बड़ा दुख होता है अपने आप, और साधुओं का, देवताओं का, सज्जनों का मन प्रसन्न हो जाता है, अपने आप प्रसन्नता आ जाती है। जिस दिन भगवान गर्भ में आए उसी दिन से सारे लोकों में सुख शांति छा गई। जातिन ते हरि गर्भ आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सर्वत्र सुख शांति छा गई। यह भगवान के गर्भ में आने का प्रभाव, क्योंकि भगवान आनंदमय है, आनंद घन है, इसीलिए इस प्राकृत जगत में भले वो गर्भ में रहें चाहे कहीं रहें, उसका उनके आनंद का विकीर्ण होने लगा, चारों तरफ सुख शांति छा गए, पूरे ब्रह्मांड में सब देवता और अन्य जीव प्रसन्न हो गए। मंदिर मां सब राज हिरानी शोभाशील तेज की खान, और महाराज दशरथ के राजभवन में रानियां बहुत सुंदर लगती है। जिस नारी के, जिस स्त्री के गर्भ में साक्षात भगवान है उसकी शोभा का क्या कहना है। इस जगत में देखा जाता है कि जो स्त्री गर्भवती होती है तो उसका शरीर भारी हो जाता है और वह प्रसन्न नहीं देखी जाती है, परंतु भगवान जब गर्भ में आते हैं तो प्रसन्नता बढ़ जाती है। इसका उदाहरण श्रीमद् भागवतम में है। कंस देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया था और 1 पुत्र अदृश्य हो गया था, बलराम जी का पता नहीं लगा था। तो देवकी बहुत दुखी रहती थी, बहुत दुखी। लेकिन जब देवकी के गर्भ में भगवान आए तो उसका सारा दुख नष्ट हो गया। उसके चेहरे पर सुख की मुस्कान रहती थी हमेशा। कंस को पता लगा, वो तो गिन ही रहा था कितने कितने गर्भ हुए। तो 8वें गर्भ के समय वो जेल में निरीक्षण करने गया देवकी का, कैसी है क्या है। उस गर्भ को उसे मारना था, तो जाकर देखा कि सुचिस्मिता, देवकी के मुख पर सुख की हंसी मुस्कान, जिसके 6-6 पुत्र मारे गए थे और 1 पुत्र अदृश्य हो गया था। बेचारी गर्भवती थी, पति के साथ कारागृह में रह रही थी, फिर भी देवकी आनंद में थी। तो देवकी के आनंद को देखकर कंस निश्चय कर लिया, निश्चित ही हरि इसके गर्भ में प्रवेश किया, क्योंकि वो जहां रहता है वहां सब लोग सुखी रहते हैं। तो जब सब लोग सुखी रहते हैं ये जानते हो, तो तुम उनके भक्त क्यों नहीं हो जाते हो? इसको दुख हो रहा था, ये घबरा रहा था। वो कहता है कि निश्चित इसके गर्भ में भगवान प्रवेश किया है, विष्णु प्रवेश किया, इसी से इतना प्रसन्न है। असुर होते हुए भी कंस को यह इस बात का पता था कि भगवान आनंद घन है। कंस जैसे असुर भी कम से कम इतना ज्ञान रखते थे कि भगवान निराकार नहीं। आजकल के असुरों से वो बहुत अच्छा था, इतना मानता था कि भगवान है और गर्भ में आ चुका है, ये भी मानता था। तो देवकी की प्रसन्नता को देख करके वो समझ गया। तो भगवान जब आए माता कौशल्या के गर्भ में और भी अपने अंशों से अन्य माताओं के गर्भ में, तो सारे लोगों में सुख संपत्ति छा गई। अपने आप बिना कोई व्यवस्था के, बिना उद्यम के बहुत सुख छा गई। और रानियां राजमहलों में बहुत सुंदर लग रही है। तो सुखयुक्त कछुक काल चली गय, जो इहर प्रकट सु अवसर भय। इस तरह से बहुत सुख से दिन जा रहा था। गर्भ में भगवान आए थे, सुख के साथ दिन बीत रहा था। अब वह समय आ गया जिस दिन भगवान प्रकट हुए, आज का दिन। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अचर हर्ष जुट राम जन्म सुखमूल। जो भी ग्रह नक्षत्र लग्न तिथि वार थे सब अनुकूल हो गए। किसी व्यक्ति के जन्म के समय ग्रहों की क्या स्थिति है, कौन दिन है कौन मुहूर्त है, इन सब का बड़ा महत्व है। इसलिए लोग जन्म कुंडली बनवाते हैं। जन्म के समय ग्रहों की स्थिति का बहुत महत्व है। तो भगवान के जब प्रकट होने का समय आया तो सारे ग्रह अपने आप अनुकूल हो गए, अपने को धन्य करने के लिए भी अनुकूल हो रहे थे, न कि भगवान का मंगल करने के लिए। भगवान का तो अमंगल हो ही नहीं सकता है, वो तो कभी भी जब भी प्रकट होंगे वही सबसे बड़ी मंगल वेला होती है। लेकिन ग्रह जोग लग्न ग्रह बार तिथि सभी अपने आप अनुकूल होने लगे कि हम धन्य हो जाएंगे। सकल भय अनुकूल, चर और अचर हर्ष जुट, चर और अचर। चर का अर्थ है पशु पक्षी मनुष्य कीड़े और देवता, तथा अचर का अर्थ है वृक्ष पर्वत नदियां, ये सब सुखी हो गए, सभी जीव सुखी हो गए। चर और अचर हर्ष जुट राम जन्म सुख मूल, क्योंकि राम का जन्म हो रहा है। जो राम है सुख के मूल है, अथवा श्री राम का जन्म ही सुख का मूल। इस जगत में भगवान का बार बार आना, अवतार लेना, यह सुख का आधार है। तो ऐसे सुख निधान आनंद कंद भगवान इस प्राकृत जगत में प्रकट हो रहे हैं, तो क्यों नहीं सब जगह शांति छा जाएगी। बहुत ग्रहों की स्थिति बिल्कुल ठीक थी, एक दूसरे का कोई अतिक्रमण नहीं कर रहा था। और जो जो के लग्न ग्रह बार तिथि सब कुछ ठीक होगा। प्रकृति की बहुत सुंदर दशा होती है। आपने देखा है संसार में जब कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो सजाया जाता है, गेट बनाया जाता है, बंधनवार बनाया जाता है और गलियां साफ की जाती है, सड़क साफ किए जाते हैं। एक बार मैं देखा था इंदिरा गांधी जी का प्रोग्राम था एक शहर में, तो वहां पर ये अनाउंस हुआ कि जितने भिखमंगे रोड पर हैं उनको थोड़े देर के लिए छिपा देना चाहिए। ये बनारस की घटना है। तो दशा समेत घाट पर तो बहुत से भिखमंगों की लाइन लगी रहती। मैं उस दिन गया, अकस्मात पर देखा कि एक भी भिखमंगा नहीं है। मैं पूछा कि क्या बात है, तो बताया गया कि प्रधानमंत्री जाने वाले हैं इसलिए उनके दृष्टि में लोग न रहे, सब हटा दिया। हटा करके एक आध घंटे के बाद फिर हाजिर कर दिया, छोड़ दिया गया, वही अमंगल दृश्य हो गया। तो बताइए जब एक नेता के आने पर ऐसी व्यवस्था की जाती है, सब ठीक रहना चाहिए, गान बजान होना चाहिए, पुलिस के लोग खड़े रहें, सलामी दें, तो भगवान आते होंगे तो कितनी प्रकृति सजती होगी। सारे ग्रह सज गए, प्रकृति सज गए, पृथ्वी सुखी हो गई, सुख शांति छा गई। ये भगवान का अपना प्रभाव है। यहाँ तो व्यवस्था करने पर तब सफाई होगी, बहुत परिश्रम करने पर, उसके लिए डिपार्ट होता है, लेकिन भगवान के केवल आने मात्र से सारी व्यवस्था हो जाती है। उनका अपना प्रभाव। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। कौन दिन था, कौन तिथि थी? नवमी तिथि मधुमास पुनीता, और महीना था मधु, चैत्र को मधु मास कहते हैं, चैत्र को मधु मास कहते हैं और वैशाख को माधव कहते हैं, मधु माधव। भागवत में लिखा गया है कि बलराम जी दो महीने ब्रज में रहे, मधु और माधव महीने, ये मधुमास कहते हैं। क्यों मधुमास कहते हैं चैत्र को? क्योंकि वर्ष में सबसे अधिक मधु का प्रोडक्शन इसी महीने में होता है, बसंत का पहला महीना माना जाता है। तो कुछ लोग बसंत का प्रादुर्भाव बहुत पहले से मानने लगते हैं, फागुन को भी बसंत में मानते हैं, परंतु ऋतुओं की गणना के अनुसार चैत्र बसंत का पहला महीना है। पतझड़ के बाद नए नए पत्ते आते हैं वृक्षों में, बहुत सुंदर लगते हैं वृक्ष लताएं, और उनमें मधु स्रावित होता है, तथा मधुमक्खियां भ्रमर आदि मधु लगाते हैं नए नए फूलों को पाकर, इसलिए इसको मधुमास कहते हैं। चैत्र वैशाख यह बसंत ऋतु, और जेठ और आषाढ़ इसको कहते हैं ग्रीष्म ऋतु, तथा सावन और भादो प्रावीर वर्षा ऋतु, क्वार और कार्तिक को कहते हैं शरद ऋतु, अगहन और पुष को हेमंत ऋतु कहते हैं, तथा माघ और फागुन को शिशिर ऋतु कहा जाता है। ये छह ऋतुएं होती है। हमारे देश में दो दो महीने पर ऋतु बदलती है। अब तो इतना जनवरी फरवरी भर गया कि इसके आगे लोग इसको जानते ही नहीं है, अपनी गणना भूल गया। अभी मैं देखा एक भक्त को कुछ गिनने हुआ तो वो लगा करने 1 2 3 4, मैं कहा हिंदी नहीं जानते हो क्या, 1 2 3 कर रहे हो, 1 2 3 नहीं गिन सकते? तब गिनने लगा, हाँ ठीक है 1 2 3। कितना सुंदर नाम है मधुमास, मधु का मंथ, मधु का महीना। नौवीं तिथि थी, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, पवित्र मधुमास चैत्र, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, और शुक्ल पक्ष चल रहा था, शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि थी, और मुहूर्त कौन था भगवान के जन्म के समय? अभिजित मुहूर्त। अभिजित मुहूर्त का ऐसे शाब्दिक अर्थ होता है अभिता जयति या जयम ददाति इति अभिजित, जो सब प्रकार से विजय दे, सफलता दे किसी को, उसको अभिजित कर। तो अभिजित मुहूर्त चल रहा था, हरि प्रीता, जो भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान जब भी यहाँ प्रकट होते हैं तो अभिजित मुहूर्त में प्रकट होते हैं। कई अवतारों के विषय में श्रीमद् भागवतम में लिखा गया, भगवान श्री कृष्ण भी प्रकट हुए तो अभिजित मुहूर्त में और रोहिणी नक्षत्र में। भगवान श्री राम प्रकट हुए तो वह दिन था भाम बार, युद्ध बार थी, मुझे ध्यान नहीं क्या नाम है, मंगलवार, भाव बार लिखा गया है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, और आगे वर्णन किया जा रहा है क्या समय था भगवान के आविर्भाव का। मध्य दिवस यति शीतन घान पावन काल लोक विश्राम, मध्य दिवस था, बिल्कुल कंप्लीट वर्णन दिया जा रहा है। चैत्र का महीना, नवमी तिथि, अभिजित मुहूर्त और शुक्ल पक्ष तथा शुक्ल पक्ष के नवमी का मध्य दिन था। भगवान श्री कृष्ण ठीक आधी रात को मध्य रात्रि में जन्म लिए और भगवान श्री राम ठीक मध्य दिन में, मध्य दिवस। अति शीतन घाम, न उस समय ठंडा रह जाता है और न अभी बहुत ज्यादा घाम होता है। और भगवान जब प्रकट हो रहे थे तो उस समय तो सारा ब्रह्मांड ऐसी हो गया था, शीत और घाम नहीं, मशीन से नहीं बनाना पड़ा था, अपने आप सब कुछ सम से प्रश्न वाले। शीतल मंद सुर हर शीत सुर संतन मन जाओ, शीतल मंद और सुगंधित वायु चल रहा था अपने आप। कभी किसी के मन में शंका हो सकती है कि आखिर कोई सोर्स होगा बनाने वाला, तब ना वहां से शीतल सुगंधित और मंद हवा चल रही। प्रकृति के नियामक भगवान है, उनके स्वागत में प्रकृति सज भज करके तैयार हो गई। शीतल मंद सुगंध समीर चलने लगा और देवताओं का मन हर्षित हो गया और संतों का, भगवान के भक्तों के मन में बहुत उल्लास छा गया। भगवान के आगमन से भगवान के भक्तों का मन उल्लास में छा जाता है, असुरों से ठीक विपरीत होता है। शीतल मंद सुरभि बहबाउ हर्षित सुर संतन मन चाउ, कुसुमित बन गिरिगन मनियारा सवही सकल सरिता अमृत धारा। और सारे वन सारे वृक्ष खिल गए, पुष्प से भर गए, जिनमें पहले से फूल नहीं था उन वृक्षों में और लताओं में भी भगवान के जन्म के समय फूल भर गया और सुगंधित फूल सब तरह। कुसुमित वन, वन का अर्थ वृक्ष भी होता है और वन का अर्थ जंगल भी, सब जगह फूल ही फूल, फूल ही फूल हो गए। ये तो थोड़ा वर्णन दिया जा रहा है, इसे समझ लेना चाहिए। जैसे दशम स्कंद में वर्णन है, दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में शुरू में उनको सारा वातावरण हो गया। कुसुमित वन, कुसुमित का पुष्पित, कुसुम आ गए सभी वृक्षों में लताओं में। कुसुमित वन गिरिगन मनिया, और जितने भी पर्वत थे उन पर मणियां अपने आप बाहर आया करके चमकने लगी। मणि प्राप्त करने के लिए सोना या हीरा खुदाई करनी पड़ती है, लेकिन भगवान के जन्म के समय पर्वतों में बाहर मणियां आया करके चमकने लगी। चार सब जगह धन ही धन दिखाई देता, गिरिगन मनियारा श्रव ही सकल सरिता अमृत धारा, और सारी नदियों में जल ऐसा हो गया जैसे लगता था कि अमृत बह रहा है। दूसरा प्रदूषण बिल्कुल नहीं रह गया, कुछ है तो प्रदूषण था ही नहीं पहले से भी। इन नदियों का जल बिल्कुल स्वच्छ हो गया, नदियां भर गई और अमृत जैसा जल हो गया। इसका अर्थ बहुत स्वच्छ और मधुर जल हो गया। इस प्रकार से संक्षेप में प्रकृति की अवस्था का वर्णन करके अब देवताओं के द्वारा भगवान के आगमन के स्वागत का वर्णन करते हैं। सो अवसर विरंची जब जाना चले सकल सुर साजी विमाना। ब्रह्मा जी को ये पता चला कि भगवान अब जन्म लेने वाले हैं, प्रकट होने वाले हैं गर्भ से। कैसे जाने ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी और देवताओं को ये टेलीफोन की और मोबाइल की जरूरत नहीं है, वो सर्वज्ञ हैं, जान जाते हैं सब कुछ। ब्रह्मा जी सर्वज्ञ शिरोमणि है, जान गए कि भगवान अब प्रकट होंगे। कुछ महान पुरुषों के मन में कुछ ऐसे आनंद के उद्रेक होते हैं कि वे समझ जाते हैं कि इसी कारण से आनंद आ रहा है। तो ब्रह्मा जी सबसे बड़े भक्त हैं, वे समझ गए कि भगवान अब प्रकट होना चाहते हैं। तो ये तुरंत समस्त देवताओं को सूचना दिए, चलो 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 चलो, और अपने अपने बगीचों से गार्डन से सबसे श्रेष्ठ कोटि के फूलों को ले लिए। कई विमान केवल फूलों से भर दिए गए, साज विमान, विमान साज साज करके चले। विमान सजाने का अर्थ था विमानों पर फूल लेना, अलंकार लेना, स्वर्गीय और आभूषण लेना, सब धन भर करके, पुष्प भर करके, और लोग चले अयोध्या की तरफ। चले सकल सुर साज विमान, सकल सुर सारे देवता चले। देवता लोग वास्तव में रामनवमी मनाते हैं, आदमी क्या मनाए। आज रामनवमी पर्व है और अपने अपने घर में ऑफिस में सब पड़े। संसार में देख ही रहे बहुत कम लोग देवता के रूप में मना रहे हैं। इन देवताओं के विषय में कहा गया है चले सकल सुर साज विमान, सारे देवता चले, सारी देवियां चली, अप्सराएं, गंधर्व जो गान कला में बहुत ही कुशल है, वे सब अपनी अपनी कला द्वारा भगवान को रिझाने के लिए भगवान के जन्मोत्सव में चले। जिसके पास जो भी कला हो भगवान के जन्म के समय वो अपनी कला को प्रदर्शित करना चाहिए। जो कोई व्यक्ति नाचना जानता है तो नाचना चाहिए, गाना जानता है तो गाना चाहिए आलस छोड़ करके। और भगवान ने यदि धन दिया है तो धन खूब न्यौछावर करना चाहिए भगवान को। देवता लोग धन लेकर, फूल लेकर, वस्त्र लेकर, अलंकार लेकर के आए, भर भर करके विमान चले। देवताओं के लोक में सोचना नहीं पड़ता है कि ये धन कहाँ से ले चलें, और फूल लेना है तो अब खरीदो जाकर के दादर में, और यहाँ खरीदो वहां खरीदो, वहां खरीदना नहीं पड़ता कुछ। फूल भरा हुआ है और कोई वहां दुकान नहीं करनी पड़ती है, फैक्ट्री नहीं चलाना पड़ता है, खेती नहीं करनी पड़ती, सब कुछ स्वाभाविक उत्पन्न होता है। तो देवता लोग चले सजा करके। गगन विमल संकुल सुर जूथा गाव ही गुण गंधर्व बरूथा। तो अयोध्या के ऊपर सारा आकाश विमान से खचाखच भर गया। खेती अयोध्या के लोग इसको नहीं देख रहे थे, लेकिन कथा कहने वाले भगवान शिव इसको देख रहे हैं, क्योंकि वे भी गए ही थे। उनका जो नंदीश्वर बैल है वह अभी बहुत बड़ा विमान है, उस पर पूरा संसार आँच सकता है, ये समझना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान शिव एक बूढ़ा बैल लेकर के घूमते रहते हैं। केवल आकार बैल का है लेकिन वह दिव्य विमान है वास्तव में। तो वही कथा कह रहे हैं कि सारे देवता भर गए थे, मैं भी था उसमें। गगन विमल है, आकाश निर्मल था, विमानों से भरा हुआ था, विमान से इतना भर गया था कि ऊपर कुछ भी दूसरा चीज दिखाई नहीं दे रहा था। बादल छा गया था विमानों से दिन के समय, और देवता फूल बरसा रहे थे। और सबसे ऊंचा स्वर किसका था? गंधर्वों का, जो स्वर्ग लोक में बहुत ही सुंदर गायक है, वे सब गा रहे थे भगवान की कीर्ति। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे गंधर्व गा रहे थे और अप्सराएं नाच रही थी।